नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रैंड पॉल की द केस अगेंस्ट सोशलिज्म एक राजनीतिक और आर्थिक तर्क पुस्तक है, जिसमें अमेरिकी सीनेटर समाजवाद के इतिहास, उसके नैतिक दावों और समकालीन अमेरिकी राजनीति में उसके पुनरुत्थान की आलोचना करते हैं। पुस्तक का घोषित उद्देश्य यह दिखाना है कि सुरक्षा, समानता और सार्वजनिक कल्याण के नाम पर बढ़ने वाली राज्य शक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी पहल और आर्थिक विकल्पों को सीमित कर सकती है। पॉल स्टालिन कालीन सोवियत संघ और वेनेजुएला जैसे उदाहरणों का उल्लेख करते हुए तर्क देते हैं कि समाजवादी प्रयोगों में दमन और अभाव कोई आकस्मिक विकृति नहीं, बल्कि केंद्रीकृत नियंत्रण के संभावित परिणाम है। वे बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज से जुड़ी नीतिगत बहसों जैसे मेडिकेयर फॉर ऑल और छात्र ऋण माफी को इसी व्यापक वैचारिक प्रश्न के भीतर रखते हैं। यह निष्पक्ष अकादमिक इतिहास नहीं है, बल्कि मुक्त बाजार और सीमित सरकार के पक्ष से लिखा गया स्पष्ट वैचारिक प्रतिवाद है। इसकी उपयोगिता इसके संक्षिप्त, प्रत्यक्ष और बहस उन्मुख ढांचे में है। हालांकि पाठक को इसके दावों को वैकल्पिक आर्थिक दृष्टिकोणों के साथ भी परखना चाहिए। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, समाजवाद को आर्थिक व्यवस्था से अधिक राज्य शक्ति के विस्तार के रूप में देखना। पुस्तक का केंद्रीय तर्क यह है कि समाजवाद केवल आय के पुनर्वितरण या अधिक सार्वजनिक सेवाओं का प्रस्ताव नहीं है। पॉल के अनुसार, जब सरकार उत्पादन, कीमतों, निवेश, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा के निर्णयों पर अधिक अधिकार लेती है, तब नागरिकों की आर्थिक स्वायत्तता घटती है। किसी व्यक्ति का काम चुनना, बचत लगाना, वस्तु खरीदना या सेवा प्रदाता चुनना भी राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक नियमों पर निर्भर होने लगता है। लेखक इस निर्भरता को स्वतंत्रता की हानि मानते हैं। उनका जोर इस बात पर है कि सहायता पाने वाला नागरिक भी तब कमजोर स्थिति में हो सकता है जब सहायता की शर्तें, मात्रा और उपलब्धता पूरी तरह सरकार तय करे। इस दृष्टि में कल्याणकारी वादा और नियंत्रण की क्षमता साथ साथ बढ़ते हैं। पुस्तक का तर्क मुख्यतः सिद्धांतगत है, इसलिए वह समाजवाद और व्यापक कल्याणकारी राज्य के बीच की जटिल भिन्नताओं को सीमित जगह देता है। फिर भी यह पाठक के सामने एक उपयोगी प्रश्न रखती है। किसी नीति का मूल्यांकन केवल उसके घोषित लाभ से नहीं, बल्कि उससे बनने वाले अधिकार संबंधों से भी होना चाहिए। पॉल के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल संपत्ति रखना नहीं, बल्कि बिना अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के स्वैच्छिक विनिमय और व्यक्तिगत निर्णय कर पाना है। दूसरा, ऐतिहासिक उदाहरणों से हिंसा, अभाव और केंद्रीकरण का संबंध स्थापित करने का प्रयास। पॉल समाजवाद की आलोचना को केवल वर्तमान अमेरिकी चुनावी विवाद तक सीमित नहीं रखते। वे सोवियत संघ के स्टालिनवादी दमन और वेनेजुएला के आर्थिक संकट जैसे व्यापक रूप से चर्चित उदाहरणों का सहारा लेते हैं। उनका निष्कर्ष है कि केंद्रीय योजना के लिए राज्य को संसाधनों, उत्पादन और वितरण पर लगातार अधिक नियंत्रण चाहिए होता है। जब योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं देती, तब सत्ता असहमति, बाजार संकेतों और निजी विकल्पों को बाधा मान सकती है। इस क्रम में दमनकारी उपायों की संभावना बढ़ती है। वेनेजुएला का संदर्भ विशेष रूप से इस तर्क के लिए आता है कि मूल्य नियंत्रण, उत्पादन पर हस्तक्षेप और कमजोर संस्थाएं मिलकर कमी तथा मुद्रास्फीति को गंभीर बना सकती हैं। पुस्तक इन उदाहरणों को समाजवाद की अंतर्निहित विफलता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करती है। विश्लेषणात्मक रूप से पाठक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग देशों के परिणामों में युद्ध, संस्थागत गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी भूमिका निभाती हैं। फिर भी पॉल का मुख्य बिंदु स्पष्ट है। अच्छी मंशा, किसी व्यवस्था के प्रोत्साहनों और शक्ति संकेंद्रण के जोखिम को समाप्त नहीं करती। इतिहास उनके लिए चेतावनी का स्रोत है कि राजनीतिक सत्ता को आर्थिक जीवन पर असीम अधिकार देना नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। तीसरा, बर्नी सैंडर्स की प्रस्तावित नीतियों को वैचारिक बहस के केंद्र में रखना। पुस्तक समकालीन अमेरिकी राजनीति में समाजवाद शब्द की लोकप्रियता को लेकर विशेष चिंता व्यक्त करती है। पॉल बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज जैसे नेताओं से जुड़ी पहलों को उदाहरण बनाते हैं, जिनमें मेडिकेयर फॉर ऑल, छात्र ऋण माफी और बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च शामिल हैं। उनका तर्क यह नहीं कि हर सार्वजनिक कार्यक्रम स्वतः तानाशाही बन जाता है, बल्कि यह कि ऐसी नीतियां राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक भूमिका को तेजी से बढ़ाती हैं। उनके अनुसार, सार्वभौमिक लाभों का वादा कराधान, उधारी और नियमों के ऐसे विस्तार की मांग करता है जिसका भार अंततः अर्थव्यवस्था और नागरिक विकल्पों पर पड़ता है। छात्र ऋण माफी के संदर्भ में उनका मुक्त बाजार दृष्टिकोण व्यक्तिगत दायित्व और मूल्य संकेतों पर बल देता है, जबकि स्वास्थ्य नीति में वे प्रतिस्पर्धा और विकल्प को सरकारी एकाधिकार से बेहतर मानते हैं। पुस्तक की भाषा पक्षधर है और समर्थकों के वितरणात्मक न्याय के तर्कों को विस्तार से विकसित नहीं करती, फिर भी यह नीतिगत चर्चा को एक महत्वपूर्ण कसौटी देती है। किसी लाभ की घोषणा के साथ उसकी लागत, वित्त पोषण, प्रशासन और दीर्घकालीन शक्ति विस्तार का हिसाब भी पूछा जाना चाहिए। इस तरह पॉल समाजवाद पर बहस को नारे से हटाकर संस्थागत परिणामों की ओर ले जाना चाहते हैं। चौथा, स्कैंडिनेवियाई मॉडल को समाजवादी आदर्श मानने की धारणा पर प्रश्न। पॉल पुस्तक में उस लोकप्रिय धारणा को चुनौती देते हैं कि स्कैंडिनेवियाई देशों की समृद्धि समाजवाद की सफलता सिद्ध करती है। उनका तर्क है कि इन देशों में ऊंचे कर और व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अवश्य है, लेकिन वे निजी स्वामित्व, व्यापार, निवेश, प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। लेखक के लिए यह अंतर निर्णायक है। वे कहते हैं कि किसी देश की सार्वजनिक सेवाओं को देखकर उसे समाजवादी कहना उसकी बाजार संस्थाओं और उद्यमशीलता की भूमिका को अनदेखा करना है। यह विषय पुस्तक की व्यापक पद्धति को दिखाता है। पॉल शब्दों की राजनीतिक लोकप्रियता की बजाय स्वामित्व और निर्णय अधिकार की संरचना पर ध्यान देने को कहते हैं। उनका दृष्टिकोण यह भी रेखांकित करता है कि सामाजिक सुरक्षा और पूर्ण सरकारी नियंत्रण एक ही चीज नहीं है। हालांकि इस चर्चा में यह प्रतितर्क मौजूद रहता है कि नॉर्डिक अनुभव बाजार व्यवस्था और मजबूत सार्वजनिक सेवाओं के मिश्रण की क्षमता भी दिखाता है। इसलिए पुस्तक का उपयोगी बौद्धिक योगदान किसी एक देश को अंतिम प्रमाण मानना नहीं, बल्कि नीतियों के पीछे मौजूद संस्थागत संयोजन को अलग अलग पहचानना है। पाठक यह पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में बाजार काम कर रहा है, किस क्षेत्र में सरकार, और जवाबदेही तथा विकल्प कैसे सुरक्षित है। अंत में, अधिनायकवाद की आशंका और संवैधानिक सीमाओं की राजनीतिक अपील। पुस्तक के सबसे स्पष्ट राजनीतिक संदेशों में से एक यह है कि समाजवाद अंततः अधिनायकवाद की ओर बढ़ सकता है। पॉल के अनुसार, यदि सरकार को धन और संसाधनों के वितरण, रोजगार, उत्पादन और आवश्यक सेवाओं का व्यापक नियंत्रक बनाया जाए, तो सत्ता पर प्रभावी संवैधानिक अंकुश बनाए रखना कठिन हो जाता है। वे सीमित संघीय सरकार, खर्च पर नियंत्रण और नागरिकों के आर्थिक अधिकारों को अमेरिकी स्वतंत्रता की रक्षा के साधन मानते हैं। इस तर्क का आधार शक्ति के केंद्रीकरण की सामान्य समस्या है। निर्णय लेने वाले जितने कम और नागरिकों के विकल्प जितने सीमित होंगे, गलत नीतियों को सुधारना तथा जवाबदेही तय करना उतना कठिन होगा। पॉल इसलिए केवल आर्थिक दक्षता की नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता की भाषा में भी मुक्त बाजार का बचाव करते हैं। उनकी दृष्टि में स्वैच्छिक लेनदेन शक्ति को अनेक लोगों और संस्थाओं में बांटता है, जबकि केंद्रीय योजना उसे सरकार में केंद्रित करती है। यह निष्कर्ष विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजों में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर चुनावी और न्यायिक निगरानी भी होती है। फिर भी पुस्तक एक महत्वपूर्ण सावधानी का आग्रह करती है। किसी नीति की लोकप्रियता से अलग यह जांचना आवश्यक है कि वह किस संस्था को नया अधिकार देगी, उस अधिकार की सीमा क्या होगी और नागरिक उसे बदलने या चुनौती देने में कितने सक्षम रहेंगे। निष्कर्ष में, द केस अगेंस्ट सोशलिज्म उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अमेरिका में समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, कल्याणकारी योजनाओं और मुक्त बाजार पर चल रही राजनीतिक बहस को एक स्पष्ट लिबर्टेरियन दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। सीमित सरकार, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, निजी संपत्ति और आर्थिक विकल्प को प्राथमिकता देने वाले पाठक इसमें अपने विचारों का सुसंगत समर्थन पाएंगे। असहमत पाठकों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है, क्योंकि यह उन आशंकाओं को प्रत्यक्ष रूप में रखती है जिनका उत्तर सार्वजनिक खर्च और पुनर्वितरण के समर्थकों को देना पड़ता है, जैसे लागत, शक्ति का केंद्रीकरण, प्रशासनिक जवाबदेही और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पुस्तक की खासियत इसका अत्यंत स्पष्ट पक्षधर स्वर है। यह समाजवाद का तटस्थ सर्वेक्षण या विभिन्न वामपंथी परंपराओं का विस्तृत अकादमिक विश्लेषण बनने का प्रयास नहीं करती। इसके बजाय रैंड पॉल इतिहास, वर्तमान नीति विवाद और संवैधानिक भाषा को जोड़कर एक राजनीतिक चेतावनी प्रस्तुत करते हैं। समान विषय की अधिक तकनीकी अर्थशास्त्रीय पुस्तकों की तुलना में यह अधिक सुलभ और बहस केंद्रित है। इसकी सीमा भी यही है, जटिल नीतियों और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की विविधताओं को अक्सर इसके व्यापक वैचारिक फ्रेम में देखा गया है। सर्वोत्तम पाठन लाभ के लिए इसे समर्थक और आलोचक दोनों प्रकार के स्रोतों के साथ पढ़ना चाहिए। तब पाठक केवल निष्कर्ष स्वीकार करने के बजाय यह समझ सकेगा कि बाजार, राज्य और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर असली मतभेद कहाँ हैं।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रैंड पॉल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।